लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र बच्चों और विशेष रूप से पीड़ित बच्चों के भविष्य को प्राथमिकता देने हेतु आवश्यक उपाय करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है एक मुलाकात कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुतता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, एक मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत फादर नबोर लकड़ा के साथ वे भेंट वार्ता को प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, हम आगमन काल में हैं। आगमन काल क्रिस्तों के लिए प्रतीक्षा एवं तैयारी की घड़ी है। 2000 वर्षों पूर्व ईश्वर के पुत्र यीशु क्रिस्त एक मानव बनकर इस धरा पर आए ताकि वे मानव जाति का उद्धार कर उन्हें अपने आनंद और महिमा के सहभागी बनाएं। क्रिसमस में हम न केवल 2000 वर्षों पुरानी घटना की याद करते बल्कि अपने ही दिल में यीशु का स्वागत करते हैं। इसके लिए हमें आध्यात्मिक तैयारी करनी पड़ती है। आज हम गौर करें कि हम किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। अपने दिल में यीशु क्रिस्त का स्वागत करने हेतु सबसे पहले हमें अपना हृदय खोलना होगा, जो कई कारणों से बंद हो जाता है। जब हम प्रतिशोध या निष्क्रियता का मनोभाव अपनाते, दूसरों की चिंता नहीं करते, सिर्फ अपनी चिंता करते हैं एवं प्रार्थना, त्याग, तपस्या, दया के कार्यों और संस्कारों में ईश्वर की खोज नहीं करते, तब हम अपने आप में बंद हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर प्रभु हमारे पास आएंगे तो हम उनका स्वागत नहीं कर पाएंगे। आज प्रभु पुनः हमारे बीच आना चाहते हैं, हमें अपनी प्रचुर आशीष एवं कृपा प्रदान करना चाहते हैं। वे हमारे द्वारा महान कार्य करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम अधिक उदार होकर उन्हें अपने जीवन में प्रवेश करने दें। यूरोप के संरक्षक संत बेनेडिक्ट ने दुनिया की सुख सुविधाओं का त्याग किया और एकांत मठवासी का जीवन अपनाया ताकि ईश्वर को प्राप्त कर सके और उन्हें अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर सके। उन्होंने एक मठवास की स्थापना की जिसको उन्होंने प्रभु की सेवा का पाठशाला कहा। आज कई धर्म समाज हैं जो संत बेनेडिक्ट की आध्यात्मिकता को अपनाते हुए प्रभु और लोगों की सेवा प्रार्थना एवं कार्य के द्वारा करते हैं। माननीय फादर नबोर लकड़ा जो भारत के हैं, उन्होंने बेनेडिक्टाइन धर्म समाज में प्रवेश किया है। आज वे हमें बतला रहे हैं कि वे किस तरह प्रभु और लोगों की सेवा भारत एवं विश्व में कर रहे हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है फादर नबोर लकड़ा के साथ एक भेंट वार्ता। उनके साथ बात करें सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की।
मैं फादर नबोर लकड़ा भारत से हूँ, गिनावर पैरिश। वैसे मैं भी कुछ मीटिंग के लिए यहाँ रोम सिटी या वेटिकन आया था। मीटिंग होने के बाद मैं भी इधर उधर देखने के लिए मैं यहाँ घूम रहा था, तो इस सिस्टर से मुलाकात हुई, फिर यहाँ सिस्टर ने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं सिस्टर को भी धन्यवाद देता हूँ इस शुभ अवसर के लिए।
स्वागत है फादर आपका। मैं जानना चाहूंगी कि आप किस धर्म समाज के हैं, आपका धर्म समाज कहाँ पर है, कैसे इसकी शुरुआत हुई?
मैं संत बेनेडिक्ट धर्म समाज से हूँ और ये धर्म समाज की शुरुआत यही इटली से ही हुई है। मोंटे कासिनो सुबिया को यहीं से इसकी शुरुआत हुई है। फिर काफी वर्षों तक यही रहा, कम से कम 5वीं शताब्दी से ये धर्म संस्था की शुरुआत हुई है। इसके बाद में यहाँ से श्रीलंका गए, फिर श्रीलंका से इंडिया करीब 1965 या 66 ईस्वी में भारत आए। फिर वहाँ से कई वर्षों तक वहाँ कार्य करने के पश्चात भारत में मध्य प्रदेश जैसे जगह में पहुँचे, आसाम, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में अभी हम कार्य कर रहे हैं। हम लोग की धर्म संस्था का मुख्य उद्देश्य था प्रार्थना और काम, ओरा इतला बोरा। ये काफी सदियों तक ये चली, लेकिन धीरे धीरे जब हम भारत देश की ओर पहुंचे तो वहां की आवश्यकता के अनुसार ये ओरा इतला बोरा प्रार्थना और काम के साथ साथ हमारे एजुकेशन में भी काफी हाथ है। कई सारे रिट्रीट सेंटर्स केरल में खोले गए हैं। इस तरह सभी अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार हम लोग अपना काम भारत देश में कर रहे हैं।
बहुत अच्छी बात है और मुझे जानकर खुशी हुई कि भारत में भी कई क्षेत्रों में, कई जगहों में आप विभिन्न रूपों में सेवा दे रहे हैं, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में और आध्यात्मिक साधना इत्यादि दे करके। तो आप वहाँ पर किस क्षेत्र में ज्यादा आप काम करते हैं?
जैसे शुरुआत में केरल में जब हमारे पूरी लोग आए तो वहाँ यही प्रार्थना और काम में अधिक ध्यान दिया करते थे, जिसकी वजह से वहाँ काफी वर्ष होने के पश्चात भी अलग अलग राज्यों में फैल नहीं पाए थे, क्योंकि वे प्रार्थना और काम को अधिक ध्यान दिया करते थे। लेकिन बाद में वहाँ काफी संख्या बढ़ी तो लोग के दूसरे राज्य में भी जाने की कोशिश किए, में प्रयास किए, लेकिन किस काम वहाँ जाकर करें। जैसे जैसे अलग अलग क्षेत्र में हम लोग गए तो वहाँ जिस चीज की आवश्यकता दिखी, जैसे एजुकेशन क्षेत्र में, तो भी इस एजुकेशन के क्षेत्र में काफी हम लोगों का हाथ है। जैसे आंध्र प्रदेश में, केरल में, आसाम और मध्य प्रदेश में भी अभी एजुकेशन के क्षेत्र में काफी आगे हैं। मध्य प्रदेश में जहां हम लोग रहते थे वहां हम लोग शुरू के करीब 1985 में वहां मुश्किल से दो चार ख्रिस्ती परिवार थे, लेकिन बीच में धीरे धीरे हमारे ख्रिस्ती परिवार आने लगे और अभी करीब वहां 60 से 70 परिवार हैं। और हमारे जब स्कूल हम लोग के शुरू हुई तो हमारे ख्रिस्ती भाई बहनों में बहुत ही कम पढ़ते थे, मुश्किल से 3-4। और स्कूल जो है वहां के लोगों के लिए है, कम से कम 2.5 से 3 हजार बच्चे हैं, उसमें से ख्रिस्ती एक मुश्किल से 30 और 40 बच्चे ही पढ़ रहे हैं। वहां भी दो हम लोगों का है, फिर एक सेंट चार्ल्स कॉन्वेंट और एक डीएसएस कॉन्वेंट, 2-3 मिशन स्कूल है। वहां के लोग इन स्कूलों का अच्छी तरह से जाते हैं और बहुत भारी संख्या में बच्चे एडमिशन के लिए वहां दौड़े आते हैं। तो लोग भी अभी जानने लगे हैं कि हमारे ख्रिस्ती या तो मिशन स्कूल का महत्व क्या है।
ये बहुत अच्छी बात है कि आपने शिक्षा को भी अपना प्रेरिताई का माध्यम बनाया। तो आप इस समय जहां हमारे भारत में विशेषकर कई चुनौतियां हैं शिक्षा के क्षेत्र में, आप किन किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं?
जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, विशेष करके जो सरकार अभी आई है, चाहे अलग अलग नियम और कानून ला रहे हैं स्कूल के लिए, विशेष करके मिशन स्कूलों के लिए, जिसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी उन परेशानियों को, मुसीबतों को ध्यान ना देके बच्चों की अच्छे भविष्य के लिए हम लोग का पूर्ण रूप से कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं।
रास्ता हूँ, सत्य हूँ और मैं जीवन पूर्ण
चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक मूल्यवान जीवन। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, हर माता पिता की दिली तमन्ना होती है कि उनके बच्चे स्कूल में अच्छी पढ़ाई करके अच्छे अंक से पास करें, वे चाहते हैं कि उनके बच्चे वह बने जो खुद नहीं बन पाए। अपने बच्चों के जरिए अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने की कोशिश में कुछ माता पिता अपने बच्चों के प्रति बहुत सख्त हो जाते हैं और दूसरों से तुलना करते हैं या डरा धमकाकर पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। बच्चे अपने माता पिता की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जी तोड़ परिश्रम करके भी पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनके मन में माता पिता के प्रति डर और खुद में हीनता की भावना आ जाती है। कभी कभी वे परिस्थिति का सामना न कर पाते और गलत कदम उठा लेते हैं, या तो वे घर से भाग जाते हैं या खुद को ही खत्म कर बैठते हैं। जी हाँ, माता पिता द्वारा बच्चे को उसकी रुचि के विपरीत विषयों को जबरदस्त पढ़ने के लिए मजबूर करना भी उसे अपने मूल्यवान जीवन को खत्म करने की ओर ले जा सकता है। मेरी ऐसे माता पिता से गुजारिश है कि आप अपने बच्चे की रुचि और रुझान को देखते हुए उसे विकसित करने में मदद करें, उन्हें अपना सपना खुद साकार करने और जीवन में सफलता हासिल करने दें। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस का लिखा नाटक मूल्यवान जीवन।
मम्मी, कल हमने सांची पॉइंट पर पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है।
कौन कौन जा रहा है?
हम सभी, मतलब हमारा पूरा ग्रुप जा रहा है।
तुम्हारे ग्रुप को घूमने फिरने के अलावा और कोई काम नहीं है? पढ़ाई के नाम पर सबसे पीछे और घूमने के नाम पर सबसे आगे।
मगर पढ़ाई के अलावा भी तो
तुम्हारे दोस्तों को तो अपने करियर की कोई चिंता नहीं है, मगर मैं तो तुम्हारे करियर के लिए एक उद्देश्य लेकर चल रही हूँ। तुम्हें डॉक्टर बनना है, मतलब बनना है बस।
मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, मुझे डॉक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
कैसे नहीं है? इंटरेस्ट होता नहीं है, इंटरेस्ट पैदा किया जाता है, समझे तुम?
इंटरेस्ट जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। मम्मी, आप जबरदस्ती क्यों करती है?
अगर तुम्हारे जैसे आजकल के बच्चों के साथ जबरदस्ती नहीं की जाए तो तुम अपने शानदार करियर कभी नहीं बना पाओगे।
ओफो, इस घर में तो जीना मुश्किल हो गया है। दीदी ही अच्छी रही जो शादी करके यहाँ से निकल तो गई है।
मगर बेटा, मैं तेरे भले के लिए ही कहती हूँ। पीएमटी में एक बार तो तू फेल हो चुका है, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए।
मम्मी, आप समझती क्यों नहीं है? पढ़ाई जबरदस्ती नहीं, पढ़ाई दिल और दिमाग से होती है। मुझे जिसमें इंटरेस्ट है उसे आप करने नहीं देना चाहती, और जिस पीएमटी में मुझे इंटरेस्ट नहीं बस आप उसी के पीछे पड़ी रहती।
मेरी इच्छा है बेटा तुम्हें डॉक्टर के रूप में देखने की।
वही तो मैं भी कह रहा हूँ, मेरी इच्छा कुछ और करने की है। आप अपनी इच्छा मुझ पर कैसे ला सकती है? आपको मेरी इच्छा भी तो देखना चाहिए।
बेटा, अगर कल को तेरी इच्छा सब्जी बेचने की होगी तो क्या मैं तुझे उसे पूरा करने दूंगी?
आपको तो समझाना ही मुश्किल है।
बेटा पवन, अभी तुम्हारी उम्र समझने की है, समझाने की नहीं, समझे तुम? और सुनो, तुम्हें पिकनिक विकनिक पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी पीएमटी की तैयारी करो यहाँ बैठकर।
इस घर में तो रहना ही मुश्किल हो गया है, दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा, मैं बाहर जाता हूँ।
मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए कहा है।
पढ़ाई के लिए दिमाग में शांति होना चाहिए, मैं आता हूँ।
मैं कितनी बार समझाया है रीना, जवान होता लड़का है, यूं उसके पीछे मत पड़ा करो। अरे मैं उसे कुछ नहीं कहता और तुम बस उसके पीछे ही पड़ी रहती हो।
आप उसे कुछ क्यों नहीं समझाते?
अब वो कोई बच्चा नहीं रह गया, उसकी अपनी समझ और अपनी इच्छाएं हैं। तुम उसे गाइड कर सकती हो, लेकिन कुछ करने के लिए जबरदस्ती और मजबूर नहीं कर सकती हो।
क्यों, अपनी औलाद को लेकर माँ बाप को कोई चिंता नहीं होती है क्या?
होती है, होती है, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को अपनी इच्छा सिर्फ बता सकते हैं, उसे पूरा करने का दबाव उन पर नहीं डाल सकते।
क्यों नहीं डाल सकते? माँ बाप का औलाद पर कोई हक नहीं होता क्या?
हक तो होता है, लेकिन बस बताने और समझाने का ही। ये तो बच्चों के ऊपर होता है कि फिर वे उसे माने या न माने, आखिर जीवन तो उन्हीं का है, उन्हें ही जीना है।
तो क्या उन्हें यूं ही छोड़ देना चाहिए?
उन्हें समझाने का, प्यार से समझाने का एक तरीका होता है। अगर वे फिर भी न माने तो उन्हें उनकी मर्जी पर छोड़ देने के सिवा और क्या चारा रह जाता है?
मगर मैं पवन से अपनी इच्छा पूरी करवा कर ही रहूंगी, देखूंगी वह कब तक पीएमटी में पास नहीं होता। मुझे अपनी बात मनवाना आता है।
इसका अंजाम खतरनाक भी हो सकता है। क्यों जवान होते खून की परीक्षा लेने पर तुली हुई हो तुम?
यही तो देखना है कि वह इस परीक्षा में पास होता है या नहीं।
तो फिर किसी खतरनाक अंजाम के लिए तैयार भी रहना तुम।
आपकी तरह अगर सभी माँ बाप खतरनाक अंजाम से डरते रहे तो फिर बन गया उनकी औलाद का शानदार भविष्य।
तुम्हारे जैसी औरत को समझाना किसी दीवार से सिर टकराने जैसा है।
तो टकराते रहो अपना सिर, किसने रोका है?
मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि बेटे पर अपनी इच्छा मत ला दो, मगर ये सुने तब ना। और मैंने ऐसा कहा भी था, अपनी जिद छोड़ दो वरना इसका परिणाम खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन यह नहीं मानी। इसी की जिद से पवन पीएमटी में एक बार फिर बैठा और फिर फेल हो गया। इसके पहले यह उसे डांट पाती या कुछ कर पाती, उसने जहर पीकर अपनी जान दे दी। मेरे बेटे ने अगर आत्महत्या की है तो सिर्फ इसी औरत के कारण, इसी के कारण की है।
हाँ, अपने बेटे की मौत का कारण मैं ही हूँ। अगर मैं उस पर अपनी इच्छा ना लादती, अपनी जिद पर ना अड़ी रहती, तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता।
चुप हो जाओ रीमा, चुप हो जाओ, हिम्मत से काम लो जरा। भगवान को पवन बेटे की शायद इतनी ही जिंदगी मंजूर थी। जीजाजी, भगवान के आगे किसी का बस कहाँ चलता है। चाहते या न चाहते हुए भी हमें नियति के आगे सर झुकाना ही पड़ता है।
मगर माधवी, यहाँ तो पवन की नियति ये उसकी माँ खुद बनी हुई थी। वो तो अच्छा हुआ अपनी बेटी में इसने अपनी कोई इच्छा नहीं देखी और वह शादी करके अपने ससुराल चली गई।
जीजाजी प्लीज, कम से कम आप तो अपने आप को संभालिए। अगर आप भी अपना आपा खो देंगे तो फिर इस घर का क्या होगा। आना जाना तो संसार की कुदरत का नियम है, भला जाने वाले के साथ कौन जाता है। उनके जाने के गम का, उनकी दूरी के एहसास को महसूस करना ही उनकी आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना होगी।
मेरा बेटा, मेरा बच्चा, तू लौट आ बेटा। अब मैं तुझ पर अपनी कोई भी इच्छा कभी भी नहीं ला दूंगी। वापस आ जा बेटा।
यह सब तुम्हें पहले सोचना और करना चाहिए था। फेल होने के बाद उसने यही सब सोचकर तो जहर पिया होगा कि मम्मी फिर डांटेगी, मम्मी फिर पढ़ाई पढ़ाई करेगी। बस उसने सोचा होगा कि ऐसी जिंदगी किस काम की जिसमें अपनी इच्छा से वो अपना करियर, अपना भविष्य नहीं बना सकता, और बस खत्म कर लिया उसने अपने सब कुछ।
अब बुरा मत मानना जीजाजी, लेकिन पवन को जरा तो सोचना चाहिए था कि जिंदगी में अगर गम है तो खुशियां भी है, कांटे हैं तो फूल भी है। ये सब तो जीवन के साथ लगा ही रहता है।
ऐसे युवा होते बच्चे हताशा में और कुछ न सूझने पर ऐसा गलत कदम उठा ही लेते हैं। वे इतने हताश और अकेले हो जाते हैं कि फिर इस संसार में कोई भी उन्हें अपना नहीं लगता और वे अपना जीवन खत्म कर लेते हैं।
मगर जीजा जी, उन्हें ऐसा कदम उठाने के पहले यह तो सोचना चाहिए कि दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे कोई टेंशन, कोई समस्या ना हो। सभी की कुछ ना कुछ छोटी बड़ी समस्या तो होती ही है, तो क्या सबको आत्महत्या कर लेना चाहिए? ऐसे तो दुनिया इंसानों से ही खाली हो जाएगी।
तुम ठीक कहती हो माधवी, हमारा जीवन हर हाल में मूल्यवान जीवन होता है, जो ईश्वर का हमें दिया हुआ अनुपम उपहार है। हमें से यूं आत्महत्या करके गंवा देने का कोई हक नहीं है।
हाँ जीजा जी, हमें कोई अधिकार नहीं है कि मूल्यवान जीवन को हम सस्ती मौत के हवाले कर दें। ईश्वर ने हमें जीवन का जो उपहार दिया है, हमें उपहार वैसा ही उसे एक दिन वापस लौटाना है।
मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी माधवी। अपने घर का चिराग खुद मैंने अपने ही हाथों बुझा दिया है। अब हर माँ बाप से यही विनती है कि वे अपने बच्चों पर अपनी इच्छा ना ला दें, उनकी इच्छा का भी सम्मान करें।
मैं भी युवाओं से एक बात कहना चाहूंगी, ईश्वर का दिया जीवन उपहार एक मूल्यवान जीवन है, इसका आदर करें। जीवन संघर्ष की भट्टी में इसे तपाकर कुंदन बनाए। आत्महत्या या जीवन का अंत कर लेना समस्याओं का हल नहीं है।
मूल्यवान जीवन। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इस नाटक के कलाकार थे दिव्या शुल्या, पूजा केलकर, पद्माकर मूले और माइकल होजेस। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।